ஆறுகோடி சசம் கண்டு போட்டி, ஆறுகோடி சசம் கண்டு போட்டி, ஆறுகோடி சசிகுரு சிவராங்க நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம், நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம், நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதீம் வ்யாசம் ததோஜயமுதிரயே நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்தேர் பவதி நைஷ்டிகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5th கேன்டோ சாப்டர் 1 டெக்ஸ்ட் 15. இசாவிஸ்ரிஷ்டம் ஹி அபிஸ்ரிஷ்டம் அபிஸ்ரிஷ்டம்
அபிஸ்ரிஷ்டம்
ஹி
ஹி
அவருந்த்மே
அவருந்த்மே
அவருந்த்மயே
அவருந்த்மயே
அங்கா
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 துக்கம்
துக்கம்
சுகம்
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 பா
பா
குணகர்ம சங்காத் குணகர்ம சங்காத் ஆஸ்தாய ஆஸ்தாய தத்த தத்த ஜத் ஜத் அயுங்கே அயுங்க அயுங்க நாதஸ் நாதஸ் சக்குஸ்மாதாந்தா சக்குஸ்மாதாந்தா இவ இவ நியமானாஹ நியமானாஹ இசாவிஸ்ரிஷ்டம் ஹி அவருந்த்மயேங்கா இசாவிஸ்ரிஷ்டம் ஹி
அவருந்த்மயேங்கா
துக்கம் சுகம் வா குணகர்ம சங்காத் துக்கம் சுகம் வா குணகர்ம சங்காத் ஆஸ்தாய தத்தத் ஜத் அயுக்தநாத ஆஸ்தாய தத்தத் ஜத் அயுக்தநாத
ஈசாவிஸ்ரிஷ்டம்
ஹி அவருந்த்மயேங்கா துக்கம் சுகம் வா குணகர்ம சங்காத் ஆஸ்தாய தத்தத் யத் அயுங்கநாத சக்ஷுஷ்மதாந்தா இவ நீயமானா ஈசாவிஸ்ரிஷ்டம் ஹி
அவருந்த்மயேங்கா
துக்கம் சுகம் வா குணகர்ம சங்காத் ஆஸ்தாய தத்தத் யத் அயுங்கநாத சக்ஷுஷ்மதாந்தா இவ நீயமானா. What meaning? Isa Abhishtam.
Isa Abhishtam.
created or given by the Lord.
Created or given by the Lord.
He. Certainly.
Certainly.
Avarunmahe.
Avarunmahe.
We have to accept.
Anga.
My dear Priya Vrata. Dukham. Distress. Sukham. Happiness. Ba.
Or.
Gunakarma. With quality and work. Sangat. By association. Asthaya. Being situated in. Tat.
That condition.
Jat. Which body? Ayukta.
He gave.
Natha. The Supreme Lord.
Chakshumata.
By a person having eyes.
Andhaha.
Blind man.
Eva.
Like.
Niyamanaha.
Being conducted. So, translation. My dear Prabhupada, according to our association with different modes of material nature, the Supreme Personality of Godhead gives us our specific bodies and the happiness and distress we achieve. One must therefore remain situated as he is and be conducted by the Supreme Personality of Godhead, exactly as a blind man is led by a person who has eyes with which to see. So in the purport, Srila Prabhupada Maharaj says, by material means one cannot avoid the happiness and distress unique to his particular body. There are 8,400,000 bodily forms, each destined to enjoy and suffer a certain amount of happiness and distress. This we cannot change, for the happiness and distress are ordained by the Supreme Personality of Godhead in accordance with whose decision we have received our bodies. Since we cannot avoid the plan of the Supreme Godhead, we must agree to be directed by Him, just as a blind man is led by a person who has eyes. Under any circumstances, if we remain in the condition allotted to us by the Supreme Lord and follow His instructions, we will become perfect. The main purpose of life is to follow the instructions of the Supreme Personality of Godhead. It is such instructions that constitute one's religion or occupational duty. In Bhagavad Gita, therefore, Lord Krishna says, Sarva dharman parityajya mamekam saranam braja. That means give up all other engagements and simply surrender unto me and follow me. Bhagavad Gita 18:66. This process of surrendering by following the instructions of the Supreme Personality of Godhead is not meant for any particular caste or creed. A Brahmana can surrender, and so can a Kshatriya, Vaishya or Sudra. Everyone can adopt this process. As stated in this verse, Chakus Matandha Eva Niyamanaha, one should follow the Lord the way a blind man follows a person who has eyes. If he follows the Supreme Personality of Godhead by following the directions He gives in the Vedas and Bhagavad Gita, our lives will be successful. The Lord therefore says, Manmana Bhava, Madhaktu, Madhyaji, Mang Namaskuru, Mame Vasisi Satyangte, Pratijani Priyosime. Always think of me, become my devotee, and offer respect and obeisances unto me, then you will certainly come back home. Back to Godhead. I promise you this because you are my very dear friend, Bhagavad Gita 1865. This instruction is meant for everyone, Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Sudra. If anyone from any division of life surrenders to the Supreme Personality of Godhead and follows His instructions, his life will be successful. The previous verse has given the analogy of bulls moving under the direction of the driver of a bullock cart. The bulls, being completely surrendered to the driver, remain wherever he wants to place them and eat whatever he wants them to eat. Similarly, being completely surrendered to the Supreme Personality of Godhead, we should not aspire for happiness or regret distress. We must be satisfied with the position allotted to us by the Lord. We should follow the path of devotional service and not be dissatisfied with the happiness and distress He has given. People in the material modes of passion and ignorance generally cannot understand the plan of the Supreme Personality of Godhead with its 8,400,000 forms of life. But the human form affords one the special privilege to understand this plan, engage in devotional service, and elevate oneself to the highest position of perfection by following the Lord's instructions. The entire world is working under the influence of the modes of material nature, especially ignorance and passion. But if people engage in hearing and chanting about the glories of the Supreme Lord, their lives can be successful and they can be elevated to the highest perfection.
In the Bhagavad Narada Purana, therefore it is said, Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyatha. That means in this age of Kali, there is no other way, no other way, no other way for spiritual perfection than the holy name, the holy name, the holy name of the Lord. Everyone should be given the chance to hear the holy names of the Supreme Personality of Godhead, for thus one will gradually come to understand his real position in life and be elevated to the transcendental position above the mode of goodness. Thus all impediments to his progress will be cut to pieces. In conclusion, therefore, we must be satisfied in whatever position we have been put into by the Supreme Personality of Godhead, and we should try to engage ourselves in his devotional service. Then our lives will be successful. Om Ajnana Dimirandasya Jnana Janushalaka Chakshur Nultang Jena Tasmai Sri Guruvena. Sri Krishna. So first of all, I pay my obeisances to the president of this institute, and I also thank him for kindly allowing me in this Bhagavatam class. So for the last 4 to 5 days I have been giving this class. I thought probably you will be giving this class today. Then thank you for allowing me this opportunity. So I am very thankful to the president and the authorities here and the devotees here for allowing me their association. I will be going away tomorrow to Bhubaneswar. So I am very thankful to the devotees for their kind hospitality shown to me here. And now, anyway, Srimad Bhagavatam, this fifth canto, here Priyavrata is not willing to take to family life because he has been instructed by his spiritual master Narad Muni to take a renounced order of life. But now, after Uttanapad and his son Dhruva Maharaj and their dynasty, now Swayambhuva Manu requests Priyavrata, his eldest son, to take charge of this kingdom and to take to family life. So a king must be a householder. Other persons cannot be kings. You might be knowing that Lord Ramchandra and other devotees also. For example, Lord Ramchandra, after one fire sacrifice, he distributed the whole kingdom to the saints, to the Muni Rishis. But they gave back Lord Ramchandra again this kingdom. Similarly also, you might be knowing that one king was there, like he gave the kingdom to Vishwamitra. In his dream, his name is Vishwamitra. He gave the land, he gave the whole kingdom, very famous. By hearing his life, Mahatma Gandhi was very much influenced. What is his name?
Previously.
His son is Rohitaswa. And that king, very famous king, you must be knowing him. So, in his dream, in Satyayuga, whatever one thinks in mind also, he gets the reaction. In Kali Yuga, even if we think something in mind, we won't get the reaction. But particularly in this Kali Yuga, it is said in Srimad Bhagavatam, first canto, 18th chapter, that Sutta Goswami says to Sonakadi, Sonakuru Sis and others, that Parikshit Maharaj allowed Kali to stay, because Kali has so many disqualifications, so many defects, but still then one important virtue of Kali Yuga is that Nanu Dvesti Kalinga Samrat Saranga Iva Sarabhruk. Itara Netarani Jo because Parikshit Maharaj did not envy Kali because Kali has a good quality. Though he has so many defects, but he has one good quality. That is, that good quality is that Kusalani Asu Siddhati. Whatever good things you think of, or the pious things you think of in mind, you will get its result. But Netarani Krudhani Jat. But if we think something sinful in our mind, we won't get the effects. That is very important. That is a very good virtue of this Kali Yuga. That's why Parikshit Maharaj allowed Kali to stay. This is of course the time of Kali. But in Satya Yuga, whatever one thinks in mind, he will get its result. So that king is famous for in keeping speaking truth. His name I just forget. He is famous for speaking truth. So he just dreamt in his dream that he gave the land to Vishwamitra Rishi.
So
Mahadatta? No, no, Mahadatta. Mahatma Gandhi Tankara Yita the Kigri, both to Prabhavita Yitila. Tabar se Satya Granthal, Satya Guru. My experiment with truth by Mahatma Gandhi. So anyway, so, just in the morning came, Vishwamitra Rishi came. So he said, you have given the land to me. So why you have delayed? Yes, he gave all the land to him, Vishwamitra Rishi. Then Vishwamitra Rishi demanded, you give a dakshina. You see, this is dana, then dakshina is there. So he has nothing else to give. Because he gave all his kingdom to the Rishi, Vishwamitra Rishi. Then he went to Kasi, Vishwanath. He sold himself to cremation ground. Harishchandra. It's Harishchandra. So he sold himself, his wife, he's having a son, that is Rohitaswa. He sold everything, his family. To give Vishwamitra Rishi dakshina. So, my point is that a king must be a householder. For that reason, I am telling. So, here, Lord Brahma is requesting Priyavrata to take to household life so that he will rule over the kingdom. The entire kingdom, the entire earth, is at that time was under his disposal. A king means the samrat, he is called samrat. He is the ruler of the entire earth. So Priyavrata was not willing, even if his father Swayambhumanu requested him, he was not willing. That's why Lord Brahma is giving instructions to him. From Vedic literature, he is giving instructions. So from previous verses also, he has been giving instructions. Here also, the same instruction that you should, here particularly the instruction is, that Isha Vishtam hi avarund mahe anga. Isha Vishtam, Isha Vashtam idam sarvam. Everything is everything is ordained, or everything is arranged by the Lord. Everything belongs to the Lord. Isha Vashtam idam sarvam. So similarly, Isha means controller. He controls everything. He is the supreme controller. Ishvara Parama Krishna, he is the supreme controller. Ishvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha Anadi Radhi Govinda Sarva Karana Karanam. He Govinda is the supreme controller. Now his swing festival is going on, he is enjoying. The supreme controller, and he is also the supreme enjoyer. So here Lord Brahma says, Isha Vishtam, everything comes from him. Srishta means Srishti. Everything comes from him. And that is the first verse of Srimad Bhagavatam. Janmadi asya jataha. Everything comes from him. This verse is so important प्रभु हम इंग्लिश में कहेंगे या हिंदी में कहेंगे? हिंदी में कहेंगे। सो ये जो है प्रियव्रत मुनि, प्रियव्रत जो है ये भी भगवान का एक सत्यावेश होता है, बहुत विभूति है भगवान का विभूति, ये बताया जाएगा बाद में। ये प्रियव्रत के साथ कोई समान नहीं हो पाएगा, प्रियव्रत इतना पावरफुल थे प्रियव्रत मुनि। सो ब्रह्मा जी उनको समझा रहे हैं दैट कि ये जो है विश्व है ये सब भगवान से सृष्टि हुए हैं। इसा सिस्टम, सिस्टम मीन्स सृष्टि, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हिम, वो सब कुछ वहाँ उन्हीं से आते हैं। वो ईसा है, वो नियंत्रणकारी है, वो सबको नियंत्रण करते हैं, उनके ऊपर कोई नियंत्रणकारी नहीं है। तो जहां हम पहुंचेंगे जो सबसे बड़ा नियंत्रणकारी है वो भगवान है, वो ईश्वर है, ईश्वर परम कृष्ण, ऐसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बताए हैं। वो परम ईश्वर है, हम सब कुछ कुछ हमारा नियंत्रण क्षमता है, हम कुछ नियंत्रण करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी कोई नियंत्रणकारी है। जब हम अंतिम नियंत्रणकारी के पास जाएंगे वो है कृष्ण, उनके ऊपर कोई नियंत्रणकारी नहीं है, फिर भी वो नियंत्रित होते हैं भक्तों से, वो नियंत्रित होते हैं। ये भगवान का भक्त वत्सलता है। जैसे भगवान कहते हैं भागवतम नवम स्कंद में, हम भक्त पराधीनो, जब दुर्वासा आए थे, दुर्वासा ने अम्बरीश महाराज के साथ अपराध किए थे, तो जो दुर्वासा मुनि आज द्वादशी तिथि है उसी तिथि में ये घटना हुआ था। तो वृंदावन में वो गए थे, वृंदावन में अम्बरीश महाराज ने वो एकादशी करके द्वादशी पारणा करने के लिए सोच रहे थे, अरेंजमेंट कर रहे थे, जैसे हम अभी करेंगे। इसी दिन दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि का वो बहुत गर्व था, क्योंकि उन्होंने वो उनका ये है अष्टांग योग सिद्धि है, बहुत योग सिद्धि उनके पास है, लेकिन अम्बरीश महाराज ये तो एक भक्त है। लोग ये नहीं समझ सकते हैं ये भक्त कैसे योगी से ऊपर है, जो अष्टांग योगी है वो समझते हैं अष्टांग योगी बहुत उन्नत स्तर में है, लेकिन बात ये है लेकिन जो भक्त है वो ही सबसे ऊपर है, योगी से भी वो ऊपर है। जैसे भगवद गीता में सप्तम अध्याय में भगवान बताए हैं जे तपस्वी भ्यो दिको योगी, ज्ञानी भ्योति दिको मतो, कर्मी भ्यस्ता दिको योगी, तस्मात योगी भवार्जुना, इस षष्ठ अध्याय में भगवान बताए हैं। तो ये योगी जो है, योगी नाम अभी सर्वेशा मत गतेना अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मांग स्वामी युक्त तम मत। योगी योगियों के बीच में श्रेष्ठ योगी कौन है? जो भगवान का भक्ति करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ये भक्त भक्त जो है, भक्त सबसे ऊंचे हैं। भक्त के साथ योगी भी समान नहीं हो पाएगा, जो ज्ञानी भी समान नहीं हो पाएगा, और कर्मी का बात क्या करेंगे। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है जो भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो कर्म मार्ग में अग्रसर होते हैं, जैसे वेद में जो त्रैविद्या है ऋक् साम यजु, ये तीन वेदों में कर्मकांड के बारे में बताया गया है, जो उसी कर्मकांड को आश्रय लेते हैं वो उन्नत लोक को जाते हैं, स्वर्ग लोक को जाते हैं, वो भुक्ति, उनको भुक्ति कहते हैं। जो ज्ञान मार्ग में अग्रसर होते हैं उनका कामना है मुक्ति कामना है, कर्मी का कामना है भुक्ति, ज्ञानी का कामना है मुक्ति। और जो अष्टांग योग आचरण करते हैं जैसे दुर्वासा मुनि, उनका लक्ष्य होता है योग सिद्धि। सो उनका, क्योंकि उनका कुछ कुछ कामना है इसलिए वो शांत नहीं होते हैं, वो अशांत रहते हैं। इसे ऐसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकल अशांत, सब कुछ अशांत है, सब अशांत है, क्योंकि उनका कुछ कुछ कामना है। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, लेकिन जो कृष्ण भक्त है उनका कोई कामना नहीं।
कोई पूछ सकता है, वो हम तो कामना करते हैं, भक्त भी कामना करते हैं, मरई अभिलाष विलास कुंज दिए वास, ये हमारा कामना है, तो कैसे हम कहते हैं भक्तों का कामना नहीं? नहीं, ये जो कामना है ये कामना ही प्रकृत कामना है, अन्या अभिलाषा शून्यम, ये अभिलाषा हमारा रियल अभिलाषा है, प्रकृत अभिलाषा ये होना चाहिए हमको। हम निष्क्रिय, हम जड़ नहीं, हम चेतनशील है, हमारा कुछ ना कुछ कामना होगा, लेकिन जब हमारा कामना होगा या इच्छा होगा या अभिलाष होगा भगवान के सेवा करने के लिए, ये अभिलाष सही अभिलाष है। उससे जो दूसरा अभिलाष होगा ये अन्य अभिलाष है। ये जो ज्ञानी है, जो कर्मी है, जो योगी है, उनका दूसरा अभिलाष है, इसलिए उन्होंने वो शांत नहीं होते हैं। तो वो दुर्वासा नहीं समझ सकता था, वो समझ सकता था मैं बहुत योगी हूँ, मेरा योग सिद्धि है, तो मेरे से ऊपर कैसे लोग समझते हैं ये अम्बरीश को, अम्बरीश एक सादा सीधा भक्त है ये इतना इनका कोई योगिक सिद्धि नहीं है। तो उन्होंने जो अम्बरीश को मानने के लिए चाहा था, क्योंकि वो जब आए थे, आप सबको मालूम होगा फिर भी मैं बताता हूँ, जो द्वादशी इसी तिथि में आए थे, बहुत साल पहले वो आए थे वृंदावन में आए, तो वृंदावन में जो अम्बरीश ने एकादशी करके द्वादशी पारणा करने के लिए जो तैयार कर रहा था, अभी हमारा तैयार हो रहा है पारणा के लिए, तो इसे पारणा कर ले तैयार हो रहा था, उसको जब आए अम्बरीश ने बहुत सारे दान दिए, बहुत गायें दान दिए, बहुत धन रत्न दान दिए, सब दान देकर पारणा करने के लिए जा रहे थे। उस समय दुर्वासा मुनि आए, तो दुर्वासा मुनि को देखकर उन्होंने भी स्वागत किए, तो दुर्वासा मुनि को निमंत्रण किए, प्रार्थना किए प्रसाद लेने के लिए, तो उन्होंने बताया मैं थोड़ा स्नान करके आऊंगा। तो जमुना नदी के गए और जानबूझकर वो देर किए, देखते हैं क्या करता है अम्बरीश। तो अम्बरीश ने देखा वो हो गया पारण टाइम हो गया, तो क्या करेंगे, वो पूछ रहे थे ब्राह्मणों से क्या करेंगे हम, हमारा क्या कर्तव्य है, वो हमारा गेस्ट आए हैं, अतिथि आए हैं, उनको खाना नहीं देकर हम जब अब प्रार्थना करेंगे तो ये भी एक अपराध होगा, लेकिन ये जो द्वादशी तिथि है, प्रार्थना समय बीत जा रहा है, क्या करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे ये भी एक अपराध होगा। तो ब्राह्मणों ने आंसर नहीं दे पाए, लेकिन वो जो भक्त होते हैं, भक्त का सब ज्ञान होते हैं, जैसे ये बताया गया शास्त्र में, जस्मात विज्ञानतम सर्वम एवं विज्ञानतम भवति, जो भगवान को जानते हैं वो सब कुछ जानते हैं। तो अम्बरीश ने वो शास्त्रों से कहे, ये शास्त्र में विधान है, जो पानी है, जो जल है, ये खाना होगा नहीं खाना भी होगा, ये फास्टिंग होगा और फूड भी होगा, तो इसलिए उन्होंने एक गंडूस जल तुलसी लिए, तो ये जान गए, विश्वामित्र जान गए, तो इसलिए उन्होंने एक उनका एक जटा निकालकर उनको मारने के लिए कहा था। तो ये साक्षात अग्नि होकर अम्बरीश को जलाने के लिए आया था, लेकिन अम्बरीश ने कुछ भय नहीं किया, वो साक्षात मृत्यु है फिर भी उन्होंने भय नहीं है, नहीं उनका भय नहीं है, जो भक्त होते हैं उनका कोई भय नहीं होते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान उनको रक्षा करते हैं, इसलिए भगवत गीता में भगवान अपने आप घोषणा नहीं करके अर्जुन को कहते हैं तुम घोषणा करो, कौन्तेय प्रतिजानहि नामे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी विनाश नहीं होता है। तो जो सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र ने उसी किसी इसका नाम था कृत्या, जो जटा को एक राक्षस बना दिया, इसका नाम था कृत्या, तो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को जला दिया और अम्बरीश दुर्वासा के पीछे भागा उनको जनाल के लिए। तो अम्बरीश ने सब जगह दौड़े भागे, गर्भोदक जल में डूबे ताकि वो आग से बच सकेंगे, नहीं सब जगह वो सुदर्शन चक्र जा रहा था, लेकिन फाइनली ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जो यहाँ आए हैं उनके पास गए, ब्रह्मलोक गए, वो ब्रह्मा के पुत्र शिव जी के अंश से आए हैं, वो अनुसूया का पुत्र है, अत्रि मुनि का पुत्र है दुर्वासा, सो ब्रह्मा जी भी उनको रक्षा नहीं कर सके, तो उसके बाद वो शिव जी के पास गए, शिव जी के अंश से वो दुर्वास आए थे, फिर भी शिव जी ने कहा मैं तुमको रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तो जिसका सुदर्शन चक्र है तुम उसके पास जाओ। तो विष्णु के पास गए, वैकुंठ लोग गए, वैकुंठ विष्णु का सुदर्शन चक्र है। तो जब ये विष्णु लोग गए भगवान के पास, वो प्रणाम किए और उनका शक्ति भी नहीं था कुछ बोलने के लिए, सिर्फ प्रणाम किए। तो भगवान सब जानते हैं, तो भगवान बताए कि मैं तुमको रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो दुर्वासा आश्चर्य होता है, आश्चर्य होते हैं कैसे आपका चक्र है, आप क्यों, मैं ब्राह्मण हूँ, आप ब्राह्मण देव है तो आप मुझे रक्षा करना चाहिए ना, मैं भक्तो पराधीन है, अहम भक्त पराधीन हूँ। तो मेरा मतलब था ईसा जो सुप्रीम कंट्रोलर है वो भी दूसरों के अधीन में होती है, किसका अधीन में, जो भक्त होते हैं। तो उन्होंने यही से कहा अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, बल्कि वो स्वतंत्र है, उनके ऊपर कोई नहीं, वो परमेश्वर है, फिर भी वो भक्त के अधीन होते हैं, ये भगवान का भक्त बत्सलता है। तो बाद में अम्बरीश जब आए, अम्बरीश के पास जब आए दुर्वासा, तो अम्बरीश ने प्रार्थना किए सुदर्शन चक्र को, उसके बाद उन्होंने रक्षा पाए। तो ये मेरा मतलब था, ये ईसा है, सबका नियंत्रण करिए। तो ब्रह्मा जी बताते हैं ईसा अभिष्टम, ईसा से वो सबके नियंत्रण करते हैं, वो भी सृष्टि करता है, वो वहां से सब कुछ आते हैं। ईसा विष्टम ही अवरुणमहे अंग, अवरुणमहे मतलब है जो कुछ आते हैं हम जो कुछ हम अभी हैं, जिस पोजीशन में हम हैं, जितना सुख पाते हैं, जितना दुख पाते हैं, जैसे भी कुछ विपद आता है, कुछ आनंद आता है, ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, इसे हमको मानना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ऐसे बताते हैं, दुखम सुखम वा गुणकर्म संगात, जो कुछ हम दुख पाते हैं, जो कुछ सुख पाते हैं, ये हमारा जो गुण के प्रभाव से जो कर्म करते हैं उससे उसका फल स्वरूप इसको हम पाते हैं। ये भी हमारा साइंटिस्ट वैज्ञानिक भी ऐसे बताते हैं, जैसे न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो न्यूटन बताते हैं कि फॉर ईच एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो कुछ हम कर्म करेंगे उसका प्रतिक्रिया होगा। ये भी वैज्ञानिकों ने इसको ग्रहण किए हैं। तो ये जो हमारा शास्त्र में भी ऐसा है, जैसे हम काम कार्य करेंगे उसका फल हम पाएंगे, भगवान इसको फल को देंगे। कर्म नियमाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हम कर्म करेंगे उसका फल क्या होगा वो भगवान निर्धारित करेंगे। जैसे कभी कभी हम देखते हैं बहुत साधु लोग भी बहुत दुख पाते हैं, जैसे भीष्म जी वो आश्चर्य हो गए जब महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने युधिष्ठिर महाराज का शोक नहीं दूर हुआ, भगवान जितने भी बुझाए, जितने भी उनको परामर्श दिए, उनको शिक्षा दिए, फिर भी युधिष्ठिर महाराज का शोक नहीं दूर हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज और सब पांडव मिलकर, सब मुनि ऋषि मिलकर आए भीष्म जी के पास, भीष्म जी उसी जो कुरुक्षेत्र में वो सरसज्जा में थे उस समय थे। तो जब वो आए उस समय भीष्म जी ने कहा, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय में इसको कहा गया है जी, अहो कष्टम अहो न्यायम जब जुयम धर्मनंदना। यो भीष्म जी वो जो महाजन है वो भी आश्चर्य हो जाते हैं, वो कहते हैं अहो कष्टम, तुम कितने कष्ट उठाए, अहो कष्टम अहो न्यायम, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, अहो कष्टम अहो न्यायम जब जुयम धर्मनंदना, तुम सब पांडवों सब, तुम सब धर्मनंदना है, तुम सब धर्म से चलते हो, तुम अधर्म के आश्रय नहीं लिए हो, फिर भी तुमको इतना कष्ट हुआ, तुम्हारे साथ इतना अन्याय हुआ। अहो कष्टम अहो न्यायम जब जुयम धर्मनंदना जीवितु नारद कृष्ण विप्र धर्मा चुताश्रय, तुम सब ने ब्राह्मणों के आश्रय लिए हैं, धर्म के आश्रय लिए हैं, और सबसे अच्छा सबसे बड़ा अच्युत भगवान जो है, जो तुम्हारे साथ आए हैं, उनके भी आश्रय लिए, फिर भी तुमको दुख होता है, तुमको कष्ट होता है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। तो उस समय बहुत सारे मुनि ऋषि वहां थे, इवन जो भीष्मदेव का जो गुरु है परशुराम, वो भी आए थे, उनके शिष्यों के साथ वो भी आए थे। क्योंकि जब हम कितना हो गया, तो जब भीष्म जी ने उनके गुरु के साथ भी युद्ध किए थे, जो अम्बा जो था, अम्बा को नहीं शादी किए, इसलिए अम्बा ने परशुराम के पास गए थे, उनके गुरु के पास गए थे। परशुराम ने भीष्म जी को कहे नहीं तुम शादी करो, भीष्म जी कहे नहीं मैं शपथ लिया हूं मैं शादी नहीं करूंगा, तो जब शादी नहीं करोगे तुम्हारे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो भीष्म जी परशुराम उनके गुरु के साथ भी युद्ध किए। तो जो परशुराम के शिष्य होते थे वो कहते थे भीष्म नालायक बेटा, नालायक शिष्य आपका है। लेकिन जब अंत समय भीष्म जी सरसज्जा में थे, उस समय वो सब आए थे, परशुराम सब आए थे, उनके शिष्यों के साथ आए थे। तो भीष्म ये कहते हैं जो अहो कष्टम अहो न्यायम जो जुयम धर्मनंदना जीवित ना है तो कृष्णम, तुमको ये सब कष्ट उठाना नहीं चाहिए था, फिर भी तुम सबको इतना कष्ट आया। तुम विप्र के आश्रय लिए हो, धर्म के आश्रय लिए हो, अच्युत के आश्रय लिए हो। तो सब जो मुनि ऋषि वहां थे उनके भी ये प्रश्न हुआ, कैसे क्यों उनको इतना कष्ट हुआ। तो भीष्मदेव ने खुद ही उसका आंसर दिए। और भी एक और भी कथा कहे, जत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणी ब्रुकोदर कृष्ण स्त्री गांडीवं चापं श्रुत कृष्ण तथो विपद। जत्र धर्म सुतो राजा वो जो धर्मराज है, राजा जो है युधिष्ठिर महाराज जो धर्म राजा है, धर्मसूत है, धर्म के पुत्र है, और गदापाणी ब्रुकोदर जो भीम है वो गदा, उनका गदा है, बहुत शक्तिशाली है, 10,000 हाथी का बल है उनका, और कृष्ण स्त्री गांडीवं चापं जो अर्जुन का एक नाम है कृष्ण, तो वो गांडीव के साथ है फिर भी उनके पास इतना विपद है। और सबसे बड़ा चीज है सुहूत कृष्ण, भगवान खुद वहां उनके पास है फिर भी उनको साथ विपद आता है। तो इसका आंसर क्या है सब मुनिऋषि सोच रहे थे। तो भीष्म ने खुद उसका आंसर दिया, नहियस्य करिचिद राजन पुमान वेद विधिस्थितम जद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो भी। हम उसका आंसर नहीं पाएंगे इसका आंसर नहीं, ये भगवान का इच्छा से होता है। नहीं यश करिचित राजन, ये राजन भीष्मदेव कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, ये और कुछ कारण नहीं है, पुमान वेद विदिशितम जो वेद जानता है वो भी उसका कारण नहीं जान पाएगा। क्योंकि इवन अगर वो जानना चाहेगा जब जिज्ञासा करेगा क्यों जो साधु लोग होते हैं उनको क्यों वो इतना कष्ट होता है, जिज्ञासा करेगा तो मुह्यंती कभी, तो वो भी मुह्य हो जाएगा, वो भी नहीं आंसर पाएगा, ये भगवान का इच्छा से होता है। तो नहीं ये जो भक्त लोग होते हैं उनके बारे में है, लेकिन जो साधारण लोग होते हैं जो पुण्य कर्म करते हैं उसके परिणाम स्वरूप वो सुख पाते हैं, और जो पाप कार्य करते हैं उसके परिणाम स्वरूप वो दुख पाते हैं। सो ये जो नीति है उसको ब्रह्मा जी बताते हैं, दुखम सुखम वा गुणकर्म संगात, जो रजोगुण और तमोगुण से जो काम क्रोध होते हैं, काम क्रोध के शिकार होकर उन्होंने बहुत सारे पाप कार्य करते हैं, उनके परिणति स्वरूप वो बहुत दुख भोगते हैं। लेकिन जो सत्वगुण में रहते हैं, सत्वगुण में वो धर्म कार्य करते हैं, धर्म कार्य ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, जो धर्म कार्य करेंगे तो माने बाद के जीवन में वो ऊर्ध्व लोक जाएंगे, सत्य स्वर्ग लोक इत्यादि ऊर्ध्व लोक जाएंगे। तो आस्थाय तद्दल जत अयुक्त अनाथस, ये नाथ है, ये भगवान है, सबका नाथ है, सबका कंट्रोलर है, सबका पिता है, सबका नाथ है। तो हम जब ये ऐसे जीवन धारण करेंगे, जो कुछ हमारे पास आता है, दुख आता है या सुख आता है, उसको भगवान का दिया हुआ अगर हम समझेंगे, तो चक्षु स्मतांधा इव नियमाना, जैसे हम अंधा है, हम जानते नहीं, हम अंधा है, लेकिन जो जिनका पास चक्षु है वो हमको गाइड कर सकता है। तो इसलिए इस तरह ये भौतिक जगत में सब अंधे जैसे हैं, जैसे भागवत में हम श्लोक करते हैं, पाठ करते हैं, गुरु जी के प्रणाम करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन श्लाघया। हम अज्ञान में है, अंधकार में है, हमारा चक्षु हम नहीं दे सकते हैं कि किसी रास्ते में जाना है। जैसे अर्जुन ने भगवान के शरण में गए, वो कहे हम अंधा है, हम जानते नहीं कि क्या हमारा कर्तव्य है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि तंग धर्म समुदेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहितं मे शिष्यस्त्वं साधिमान् तं प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्य हुआ हूँ, आप मुझे, मैं अंधा हूँ, आप मुझे बात दिखाइए, पथ दिखाइए कि किस रास्ते में जाना है। तो ये इसे हमको मानना चाहिए। तो भगवान जो कुछ देते हैं उसको हम ग्रहण करके अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा लक्ष्य प्राप्त होंगे। जैसे भगवत गीता में भगवान बताए हैं, ये मच्चिता सर्वदोगाणी मत प्रसादा तरिष्यसि असत्य तुम अहंकारा न सोष्यसि विनक्षसि। जब हम भगवान का शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, वेदों का शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, भगवान के बात को नहीं ग्रहण करेंगे, अगर ग्रहण करेंगे तो हम सब विपद से मुक्त हो जाएंगे। मत्चिता भगवद गीता अष्टादश अध्याय में भगवान बताते हैं, मत्चिता सर्वदुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि, भगवान की कृपा से हम सब दुख को, सब विपद को पार हो जाएंगे। लेकिन हम अब भगवान के शिक्षा को नहीं ग्रहण करेंगे, गुरु के शिक्षा को नहीं ग्रहण करेंगे, शास्त्रों को शिक्षा को नहीं ग्रहण करेंगे तो विनक्षसी हमारा पतन होगा इस भौतिक जगत में, फिर हम घूमते रहेंगे। तो इससे हमारा कथा विश्राम देंगे। जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाल महाराज की जय, श्री गुरुदेव की जय। कुछ प्रश्न है या कुछ स्पष्टीकरण चाहिए? कुछ समझ विषय प्रभुपाद जो किया है उनका गुरु के निर्देश से किया है, वो गुरु का किया किए हैं, निर्देश दिए हैं वो उनका गुरु इस तरह गुरु परंपरा में आता है, जो आता है सब परंपरा में। सब ये एक साल ऐसे हरिभक्त विलास में है, सनातन गोस्वामी ने लिखे हैं, एक साल ये टाइम रहता है, शिष्य गुरु को पहचानेगा, गुरु शिष्य को परीक्षा करेगा, पहचानेंगे ये नियम ठीक नियम में है या नहीं। तो ये हम नियम नहीं मानेंगे तो कैसे शिष्य होंगे? हरिभक्त विलास में है, सनातन गोस्वामी ने लिखे हैं।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।